शांति। अभी जो गीत बज रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे आज का टॉपिक ही हो। आज का टॉपिक तो याद है ना? क्या याद है? समय की रफ्तार, कुछ ऐसा ही टॉपिक था ना, समय की रफ्तार। और क्या है टॉपिक का प्रमाण? समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थ। तो समय तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। समय ऐसी चीज है कि ना हम इसे स्लो कर सकते हैं ना फास्ट कर सकते हैं, और ना हम स्टोर कर सकते हैं, जमा भी नहीं कर सकते। हमें खर्चना ही पड़ता है। कैसे खर्चना पड़ता है? हमें 60 मिनट प्रति घंटा, ये समय को खर्चने की रफ्तार है। यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमें इसे यूज करना ही करना है। समय तो पास होता रहेगा, यूटिलाइज करे पूरा या ना करे। तो ये वास्तव में समय की जो है आज ये पुकार है। क्या पुकार है? तीव्र पुरुषार्थ, जैसा कि इसमें था। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज गति से चलना होगा। तो बाबा की परसों जो मुरली थी अव्यक्तवाणी, उसमें बाबा ने इसको बिल्कुल ही स्पष्ट किया हुआ है। कि किस प्रकार से हमें समय को ठीक रीति से यदि हम यूटिलाइज करेंगे। बाबा ने कहा है मेरे तीन प्रकार के बच्चे। कौन से तीन प्रकार के? एक तो वो जो समय की गति से तीव्र चलते, यानी उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि समय भी उनके पीछे चलता है। वो जो बाबा ने कहा था ना कि प्रत्यक्ष अपने को संपन्न बनाना ही समय की प्रत्यक्षता है। तो वो अपने को संपन्न बनाने में बस लगे ही हुए हैं, रात दिन समय उनके पीछे पीछे चल रहा है। दूसरे बच्चे वो हैं जो समय के साथ साथ चलते हैं। बाबा ने जो मुरली में बोला, मुरली सुनते हैं, पुरुषार्थ भी उनका अच्छा है, ठीक है, और जो बाबा समय प्रति समय बोलता है उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं। और तीसरे बच्चे वो तो कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। जो समय के साथ न चलता हो, आप सभी जो आए हैं तीव्र पुरुषार्थी हैं ही, तभी तो बाबा के बच्चे यहाँ आए हैं। समय के साथ साथ ही हम सब चल रहे हैं। तो अब हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, अंदर देखना है कि कैसे हम तीव्र पुरुषार्थी भव, जो बाबा ने कहा है समय की पुकार, तो वो तीव्र पुरुषार्थी होकर हमें कैसे चलना है। एक तो बाबा ने परसों ये बोला था, हाँ, अपना मन का पूरा समय का टाइम टेबल बनाओ। हम अपना टाइम टेबल तो बनाते हैं, जब कोई पुरुषार्थ होता है, कोई विशेष कार्य होता है, मेला होता है, कोई बड़ा मेगा प्रोग्राम होता है, कोई भी, तो पूरा उस में लगे रहते हैं। आज ये करना है, आज इससे मिलना है, ये बात करनी है, इस चीज का इंतजाम करना है, इतने मेहमान आएंगे, उनका ये भोजन का प्रबंध पूरा, जैसे तन की दिनचर्या होती है वैसे मन की दिनचर्या भी करनी है। मन को सदा बिजी रखना है। जब मन बिजी नहीं होता तो फिर क्या होता है, व्यर्थ मन में संकल्प चलते हैं। मन को इतना बिजी रखो, वैसे भी कहीं बिजी, कोई वीआईपी के पास जाओ, कहीं भी भाई सच एंड सच बिजी, तो उसको टाइम नहीं मिलता है और व्यक्ति चला जाता है। ऐसे ही मन हमारा बिजी अगर होगा तो माया जितनी बार भी आएगी चक्कर काटेगी, लेकिन वो बाहर से बाहर ही चली जाएगी। तो इसीलिए एक तो मन को बिजी रखने के लिए मन की दिनचर्या बनाओ, तो व्यर्थ भी नहीं आएगा। एक शिल्पकार था, मूर्तिकार, मूर्ति बनाता था, शिल्प तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, सब बहुत तारीफ करते थे। तो सबने पूछा, आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बना लेते हो, बहुत अच्छी मूर्ति। तो उसने कहा, नहीं मैं तो मूर्ति कोई बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जैसे जो पत्थर है उसके चारों तरफ जितना एक्स्ट्रा पत्थर है, व्यर्थ है, उसको बस निकाल देता हूँ तो मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। देखो सोचने का कितना पॉजिटिव ढंग, व्यर्थ को निकाल दो तो अपने आप ही मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हमारा व्यर्थ खत्म होने लगेगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूँ, कि सीनियर भाई बहनों की क्लास चल रही थी तो बाबा आए, तो बाबा ने कहा एक सर्टिफिकेट तो मैं देता हूँ कि बच्चों के विकारी संकल्प तो नहीं चलते लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी तक चलते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा था व्यर्थ संकल्प से बचने का एक तरीका ये भी है कि व्यर्थ को व्यर्थ न समझो, ये समझो ये विकारी संकल्प है। जैसे विकारी संकल्प मन में कोई आता है पुरुषार्थ के बाद भी तो अपने पर ही खीज होती है, घृणा होती है, अरे इतने साल बाद भी मेरे अंदर ये विकारी संकल्प आ रहा है, ये कमजोरी का भाव आ रहा है। तो उससे हम सदा बचने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही जैसे विकारी संकल्पों से भी बचने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे व्यर्थ संकल्पों से भी बचने का प्रयत्न करते चलें। तो एक तो बात बाबा ने ये बताई है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक तो ये स्थिति होनी चाहिए। दूसरा बाबा ने बताया कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बच्चों में विशेष गुण कहें, शक्ति कहें, वो होनी चाहिए, वो है रहम दिली का भाव। हमें किसी से घृणा न हो, कमजोरी न हो, दुश्मनी न हो, रहम दिली का भाव हो, रहम आए, बाबा इसकी ये कमजोरी भी दूर करो। जो बाबा ने कहा है सबको दुआ दो, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहे, तो रहम दिली का अगर भाव होगा तो क्या होगा, फिर हमारे अंदर स्वतः ही दातापन का भाव भी आता जाएगा। जैसे जा रहे हैं कार में, गाड़ी में, और कोई भिखारी आता है, गरीब इंसान आता है, कोई छोटा बच्चा है उसका गोती में, बस वो मांगता है तो बच्चे को भी देख के हमें रहम आ जाता है, ये भूखा है, प्यासा है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली पॉकेट में हाथ चला जाता है और कुछ दान दे देते हैं, दाता बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा है, अभी आप बच्चों में रहम दिली का भाव हो, पूरा संसार पुकार रहा है, पूरा संसार दुख अशांति उस स्थिति से पास हो रहा है, तो अंदर उनके प्रति रहम दिली का भाव हो और उसे दूर करने के लिए दाता बनो। कैसे दाता? एक तो बाबा ने कहा है कि जब भी योग करो, विशेष करके अमृत वेले, मैं लाइट हाउस हूं, मास्टर लाइट, टावर ऑफ लाइट हूं, टावर ऑफ माइट हूं, मैं आत्मा टावर ऑफ प्योरिटी हूं, टावर ऑफ पीस हूं। अपने को ऐसे इतने ऊंची स्थिति, महान स्थिति में समझ करके और चारों तरफ सकाश फैलाओ, लाइट शक्तियां फैलाओ, हर आत्मा तक वो पहुंचे। वो आत्मा बेचारी बहुत तरस रही है, तो इसीलिए वर्तमान समय की ये पुकार है कि ये जो सेवा है ये सर्वोच्च सेवा है, मन से सकाश देने की, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दो। और बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि हर आत्मा के प्रति हमारी समदृष्टि हो। होता क्या है, जिनसे हमारी मित्रता होती है, संस्कार मिलते हैं, तो उनके साथ तो हम घंटों तक बात भी करेंगे, विचार विमर्श भी करेंगे, लेकिन जिनके प्रति हमारी शुभ भावना नहीं है, जिसने हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है जिससे हमें अपमान महसूस हुआ हो, जिससे हमें गिरावट का भाव महसूस हुआ हो, कई बातें होती है, तो हम उनके सम्मुख भी नहीं आना चाहते। वो सामने से आते भी है तो हम नजर बचा के निकल जाते हैं, अपने दैवी परिवार में विशेष करके भी। क्यों? क्योंकि बाहर के संसार से तो हमारा काफी हद तक कट ऑफ हो गया, भले उनके साथ कार्य व्यवहार में आते हैं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अगर क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, अहंकार कुछ भी होगा, तो हम बस मन में ये सोचकर, ये तो अज्ञानी है, बेचारे को मालूम नहीं है, तो हम सहज भाव से ही उसे क्षमा कर देते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, उसकी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। लेकिन जो हमारा दैवी परिवार है, यही हमारा संसार है, इनसे अगर हम ऐसा व्यवहार महसूस करते हैं, कहीं उपेक्षा का व्यवहार हो, हमारी एक्सपेक्टेशन हो, अपेक्षा हो, वो फुलफिल ना हो रही हो, पूर्ण ना हो रही हो, जब ऐसा व्यवहार हम देखते हैं दूसरे का अपने प्रति, तो क्या है, उससे हम दूर चले जाते हैं, दूर और दूर भी होते चले जाते हैं, और जिनसे मित्रता है उनके साथ बहुत समय भी गुजार लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वर्तमान समय, भले स्नेह भाव तो रखना ही है जो बाबा हमेशा कहता है, लेकिन वर्तमान समय माया जो आएगी वो मोहनी रूप में आती है। उस माया के उस रूप को तो हम पहचानते हैं कि काम आया, संकल्प आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आया, अहंकार आया, लोभ आया, मोह आया, कुछ भी आया, तो उस बात को तो हम जानते हैं बचपन से, अज्ञान काल से देखते, तो वो उसको हम पहचान लेते हैं और उससे बचने का तो प्रयास सहज हो जाता है, बच भी जाते हैं। लेकिन जब माया का मोहनी रूप होता है, सबको बाबा ने कहा आत्मा आत्मा रूप से देखो, स्नेह प्रेम व्यवहार से देखो, तो जिससे ज्यादा हमारा अति स्नेह होगा उससे क्या होगा, हम अपने दिल की भी बात कहेंगे और पहले दिल की बात कह के बाबा तो कहता है बस मेरे से बात करो, दिल की मेरा तो एक दूसरा ना कोई। देहधारी को बताएंगे किसी को भी अगर तो वो बात बहुत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। देहधारी के साथ एक्सचेंज, वो अपनी राय देगा कुछ तो वो मन मत परमत साथ में मिक्स हो जाएगी। तो इस कारण से अभी क्या आवश्यकता है, हमारा समभाव हो सबके, न किसी से अति मित्रता अति दोस्ती अति स्नेह भाव, न किसी से कोई दुश्मनी वैर भाव या परायपन का भाव। लौकिक में भी कबीरदास जी बोल के गए है ना, कबीरा का बड़ा अच्छा वो है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर के बारे में कहा गया है कि न किसी से, उनका ये कहना है न किसी से दोस्ती हो अति दोस्ती, न किसी से बैर दुश्मनी का भाव, सबसे समान भाव। क्यों कहा यह आवश्यक, क्योंकि हम सब के पास ये पांच तत्वों का बना शरीर है और इस शरीर को छोड़ना ही है, गायन भी है अंतमति सोगति का। तो अगर हमारी किसी से मित्रता हुई किसी से दुश्मनी हुई वैर भाव हुआ, तो ऐसा कहते हैं सभी धर्मों में कहा गया है लगभग कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो अंत समय उसके जीवन की जैसे पूरी रील उसके दिमाग में घूम जाती है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, और उस प्रमाण वो आत्मा के तब तक प्राण नहीं निकलते, बस शरीर में ही बंधा रहेगा तरसता रहेगा निकलने के लिए आत्मा, जिससे या तो बहुत स्नेह होगा प्रेम होगा मोह होगा। इसीलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का गायन है गीता में भी, जिससे मोह होगा वो याद आता रहेगा, और जब वो आत्मा आएगी मिलेगी बात करेगी कैसे भी कोई संदेश आएगा तब ये आत्मा शरीर छोड़ सकेगी। तो इसीलिए, और या फिर वो याद आता है जिससे कोई वैर भाव हो दुश्मनी हो, अंदर बदले की भावना हो लेकिन बदला न ले सके हो, कई बातें होती है और वो भावना अगर होती है तो उससे वो याद आती रहेगी। और इसीलिए कई बार सुनते हैं कईयों की दुश्मनी तो पुश्तों की पुश्तें चली, एक पुश्त से दूसरी जनरेशन तक, दूसरी से तीसरी जनरेशन तक भी चली जाती है, चौथी तक भी। क्यों? क्योंकि अंतमति सोगति, सारे दिन भर जो मन में घूमता रहेगा वो ही फिर अंत समय वो ही याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अब ऐसा ऐसी स्थिति हो ऐसा पुरुषार्थ हो, सबको हम रहम दिल की भावना से देखें। और ये कब होगा रहम दिल की भावना, रहम दिल का बाबा ने बताया है जब अंदर क्षमा का भाव होगा। किसी की कोई गलती कमी कमजोरी देखते हैं तो हमें बड़ा वो होता है अंदर, अरे ये भाई ये बहन इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी इसके अंदर ये कमी है। और जब ये भाव अंदर आ जाता है तो वो कमी जो है फिर उसकी ही नहीं रहती, उसका हमारे अंदर मंथन चलता है और वो कमी जैसे हमारी बन जाती है। उसने तो कमी छोड़ दी या छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, छोड़ देगा छूट जाए, लेकिन हमारे अंदर हमने इसकी कमी देखी उसकी देखी उसकी देखी, हम कमियों के भंडार बनते चले जाते हैं। कमी बहुत वो संपूर्णता से हमें दूर ले जाती है। इसीलिए किसी की भी कमी नहीं, इसीलिए बाबा कहता है बस श्रीमत पर चलो, परमत या मन मत के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही न दो। और इसके लिए क्या है, अक्सर करके कई बार हाँ जब मिलते हैं बैठते हैं दो भाई बहन कोई भी तो तीसरे का जो वर्णन होता है भले गुणों से वर्णन शुरू होता हो लेकिन अंत जैसे अधिकतर उसका परचिंतन के अंदर निंदा के अंदर वो परिणित हो जाता है। तो इसीलिए कहा है परचिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो परचिंतन जो कर रहा है वो पाएगा, कर्मों की गति ऐसी है, कर्मों की गुह्यता ऐसी है, इसीलिए उस पर हम न करें, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय जो समय चल रहा है ना, ये बहुत बहुत कीमती समय है। समय की पुकार ये है वर्तमान समय की कि अगर, वैसे तो ज्ञान में जब आते हैं एक का 100 गुना प्राप्ति होती है तो एक का 100 गुना अगर विकर्म कोई हुआ जानते हुए भी तो वो माइनस हो जाता है हमारे खाते से, हमारे खाते से, और उसका दंड भी 100 गुना गहरा भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये जो समय चल रहा है उसकी पुकार ये है, डिमांड ये है कि अब हमारी कर्मेंद्रियों से की बात तो दूसरी रही, संकल्प में भी विकारों की बात, बदला लेने की बात, नेगेटिविटी की बात, ये सब कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो समय की डिमांड है ये, दूसरा उसका कई गुना दंड भुगतना पड़ता है, और जो बाबा चाहता है कि अब बच्चों को सेवा, तो जैसे मनसा वाचा करना करते हैं, कभी मनसा से शक्ति सकार देने की, वाचा से कर अपने जो एक्शन करते हैं वो, तो बाबा ने ये बताया अब सेवा का समय है। कौन सा? अपनी चाल चलन और चेहरे से सेवा। हम मुंह से एक शब्द भी ना बोले। हमें याद है जब हम ज्ञान में आए थे 1962 में, आज से लगभग 60 वर्ष पहले, जब बाबा मामा भी थे, बाबा मामा की पालना भी ली, और उसमें बाबा की विशेष करके तो बाबा की जो मुरलियां चलती थीं, वो मुरलियों में अक्सर बाबा शुरू में तो यही चलता था कि बच्चे मनसा में तूफान तो और अंत तक आएंगे, वाचा में नहीं लाना है और कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करने हैं, नहीं तो कर्मेंद्रियों से अगर विकर्म होंगे तो उसका खाता बनता है। फिर ज्ञान और सूक्ष्म होता चला गया, बाबा ने कहा वाचा से भी अगर कोई कटु वचन निकाले, किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, वाचा से भी कोई कटु वचन न निकले, हर एक से मीठा प्रेम भाव से वो। लौकिक में भी दुनिया में बोलते हैं ना कि भाई मीठा बोलो, सबसे स्नेह का बोलो, संबंध। क्यों? क्योंकि लौकिक में बताते हैं भाई देखो ये मुंह है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो दांत नहीं होते उसके, जीभ तो बचपन से ही होती है, बोलता है, शब्द ना बोलता हो रोता है, अपने को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब शरीर छोड़ता है बड़ा होके, और तो दांत भले बाद में निकले हो, दांत पहले गिर जाते हैं, जीभ बात तक रहती है, स्नेह। तो शब्द जो है मुंह से वो स्नेह युक्त प्रेम युक्त शब्द निकलने चाहिए, क्योंकि निकले हुए शब्द, तो ये बात तो ज्ञान में पहले से ही कहते आते हैं, लेकिन वर्तमान समय की पुकार क्या है, शब्द तो बाद में निकलते हैं, पहले तो संकल्प मन में आते हैं, मन की बात वाचा में आती है और कर्मणा में, और संकल्प से भी पहले क्या प्रभाव डालता है, संकल्प भी किस आधार पर उठते हैं, हमारे मन की वृत्ति के ऊपर। वृत्ति, ये जैसे सब कॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड होता है जागृत अवस्था, जैसे अभी हम सब की जागृत अवस्था, बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एक सब कॉन्शियस माइंड होता है सूक्ष्म मन, वो जो है कई कई गुना पावरफुल होता है। अगर ये कहें कि सूक्ष्म मन जो है सब कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड, वो उससे ऑलमोस्ट 10 times जैसे पावरफुल होती है, 10% 4-5% कॉन्शियस माइंड अगर होगा तो 95% सब कॉन्शियस माइंड सूक्ष्म। तो इस कारण से अभी आवश्यकता यह है अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाने की, अंदर की वृत्ति, क्योंकि जैसी वृत्ति होती है बाबा ने बोला वैसे फिर वाइब्रेशंस होते हैं। किसी के पास बैठ के जाके पास में बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, और कोई ऐसा नेगेटिव एंटी सोशल एलिमेंट होगा उसके पास जाके बैठेंगे तो अंदर नेगेटिविटी, भय, दुख, अशांति, उसका संचार होता है, ये वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन प्रदर्शित होते हैं मनुष्य के ऑरा से, जैसा देवी देवताओं के पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं ना, तो वास्तव में वो सिर्फ देवी देवताओं के पीछे नहीं है, हम सबके पीछे वो लाइट का ताज है, वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा कैमरे अभी बने हैं विशेष करके रशिया में, किरलियन फोटोग्राफी प्रसिद्ध है। किरलियन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने ऐसे कैमरे का ऐसे उसका इजाद किया कि जब व्यक्ति की फोटो निकालते हैं तो उसके साथ उसका आभा मंडल ऑरा, जो कि वाइब्रेशन डिनोट करता है, बताता है, उसका भी फोटो आ जाता है, और उससे व्यक्ति का करैक्टर, स्थिति, मानसिक स्थिति पता चलती है। मोटे तौर पर जो पॉजिटिव होंगे, शांत होंगे, पवित्र आत्माएं होंगी, उनके जो ऑरा होते हैं वो वाइट या गोल्डन येलो येलो लाइट कलर के होते हैं देवी देवताओं के, आप देखोगे। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो झगड़ालू है प्रवृत्ति, क्रोधी है, अहंकारी है, निगेटिविटी भरी हुई है, उनका ऑरा जैसे बहुत डार्क कलर का और हेजी होता है, बाउंड्री लेस होता है, कम दूरी का। और जितना जितना व्यक्ति का ऑरा पवित्र होता जाता है, व्यक्ति पवित्र, तो वो सब चारों तरफ वैसी ही लाइट फैलाता है, वो भले लाइट आंखों से न दिखे। हमने तो इसका अनुभव किया है, दुनिया के अनेक देशों में जाना हुआ, और जब रशिया में हम गए हुए थे लगभग 15 दिन वहां थे, तो वहां बहन जी ने सेंट पीटर्सबर्ग में खास उसको किरलियन फोटोग्राफी, किरलियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बुलाया था, तो वो अपने काफी इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी लेके आया था, इस बात पर उसने डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र से जो संबंधित हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, तो उसने वो दिया टाइम, और हमें मालूम है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वो वहां रहा, और उसने सब इसके बारे में काफी डिस्कस किया, हमारा ऑरा भी लिया, और शरीर के अलग अलग अंगों का, उंगलियों का लाइट वो अलग है, शरीर के सब अंगों का वो ले करके फिर उसने एक बात बताई, बहुत अच्छी हम सब ब्राह्मणों के लिए। बाबा ने उसने कहा कि भाई मेरे पास दुनिया के सब तरफ से लोग आते हैं, ऋषि, ये सन्यासी भी आते हैं, भारत से विशेष आते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, और पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। मैं सबका औरा निकालने का मुझे चांस मिला हुआ है, निकालता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि भारत से जो विशेष करके ब्रह्मा कुमारी वाले आते हैं, उनका औरा ऐसा एक अलग प्रकार का लाइट का होता है जो और किसी का नहीं होता। और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ कि उनके मन के अंदर जितनी शुद्धता पवित्रता होती है वो औरों के मन में नहीं होती। तो ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है ना। बाबा ने भी कहा है जब आपकी बातों को विज्ञान प्रूफ करेगा तब दुनिया वाले इस बात को मानेंगे। हम जितना बोलते रहे हमारा राजयोग अच्छा है, राजयोग से ये होती है, हाँ शांत शक्ति होती है, दुनिया में भी बहुत योग है, हठ योग वगैरह, लेकिन विज्ञान वाले जब इसे प्रूफ के साथ रिपोर्ट वगैरह वो देते हैं पूरी, तो वो जब और इसको प्रूफ करेंगे और नए नए तरीके, ये तो हो चुका है और ये हमें भी उन्होंने लगभग 70-80 पेज की पूरी रिपोर्ट दी और हम देख रहे थे उसे कि वास्तव में एक एक बात को उन्होंने कितना अच्छी तरीके से स्पष्ट किया हुआ था। तो इसीलिए हमारे ऑरा और वायुमंडल, ये ही तभी बाबा कहता है अंत में आपकी सेवा वाचा से नहीं होगी, कर्म मुख्य चाल चलन और चेहरे से सेवा। और चेहरा कैसा, चेहरे में भी बाबा ने बताया है जैसे लौकिक में कोई श्रृंगारित श्रृंगार किया हुआ हो, बहुत अच्छा सजा हुआ हो, देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपका जो ब्राह्मणों का श्रृंगार है ना, कितने श्रृंगार बाबा ने बताया ब्राह्मणों के, बाबा ने बताया हुआ है जो तीन खास श्रृंगार बाबा ने बताया है, सजे सजाए मुहूर्त हमेशा रहो। ये वर्तमान समय की पुकार है क्योंकि किस समय किस आत्मा को हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं, हमारा साक्षात्कार हमारे भक्तों को होता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे भक्तों को हो जाता है हमारा साक्षात्कार, ढूंढते हुए वो आएंगे। तो बाबा ने बताया है तीन प्रकार के श्रृंगार, ताज, तख्त और तिलक। ये जो श्रृंगार है इससे हमेशा सुसज्जित रहो। ताज कौन सा, रत्न जड़ित ताज तो सतयुग में मिलेगा जब, लेकिन अभी जो है हमारा प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज, जितना हम मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होंगे उतना ये पवित्रता का ताज हमारे ऑरा को और शक्तिशाली बनाएगा। हमारा जो आभा मंडल है, एक तो पवित्रता का ताज और यहाँ बाबा ने जो हमें जिम्मेवारियां दी हैं, तो वो उन जिम्मेदारियों का पालन करते हुए हमारा ये ताज उतना शक्तिशाली है। एक ये ताज की बात है। दूसरा बाबा ने कहा है तिलक। कौन सा तिलक, आत्मस्मृति का तो तिलक ये है ही है, लेकिन हम किस प्रकार से पूर्वज और पूज्य वो स्मृति में रहे। कल्प वृक्ष का चित्र है, जैसे कल्प वृक्ष की जड़ में बाबा ममा और अनन्य वत्स बैठे हुए हैं, बाबा के इमेजिन करो उन अनन्य वत्सों में मैं भी बैठा हुआ, मेरा भी वहां चित्र है, मैं बाबा के साथ पूरे सृष्टि चक्र का, पूरा जो सृष्टि का ये जो तना है, बड़ा वृक्ष है वट वृक्ष, तो उसको उसके संभाल रहा, उसका आधार मूर्त हो। तो जब ये मन की स्थिति रहेगी उससे क्या होता है, कि बीज से और तना से ना सब शाखाओं को पत्तों को पानी मिलता है और इसी से बढ़ते बढ़ते फिर वो अनेक शाखाएं वगैरह निकलती हैं, फिर फल फूल वगैरह निकलते हैं। तो मैं पूर्वज हूं, पूज्य तो जो पूर्वज बड़े होते हैं ना, वो छोटों का छोटों के सामने बचपनी हरकत नहीं करते। दुनिया वाले ये सब मेरे भक्त हैं, मेरी रचना है, तो इसीलिए समय की ये पुकार है। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल साधारण कैटेगरी का नहीं हो, बल्कि ऐसा पुरुषार्थ हो जो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे से हमारा ताज तल तख्त और तिलक, इनसे लोगों को साक्षात्कार हो जाए। और जब साक्षात्कार होगा वो खुद ही दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे, मेरे इष्ट देव कहाँ हैं, इष्ट देवियां कहाँ हैं, और देखेंगे बड़ी तृप्ति का अनुभव करेंगे और वो संस्कार उनमें बढ़ जाएंगे और द्वापर युग से फिर वो हमारी मूर्तियों की मूर्तियां बड़ी बना करके बड़े बड़े मंदिर बना करके उसमें हमारी पूजा करेंगे। वो तो जब द्वापर युग में हमारी जड़ मूर्तियों की, लेकिन अभी तो मैं यहाँ चैतन्य में हूँ, तो चैतन्य कितना शक्तिशाली होना चाहिए जड़ मूर्तियों से। तो मेरी ऐसी स्थिति हो, हर आत्मा के प्रति, पता नहीं कौन सी मेरी प्रजा है, भक्त है, सबके प्रति हमारी बहुत रहम की, दया की, प्रेम की, स्नेह की, दाता की दृष्टि हो वैसी। और जितनी जितनी ये स्थिति ऐसी होती जाएगी, उतना उतना हम फिर जो है प्रत्यक्ष होते जाएंगे, हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। बाबा ने बताया ना, बाबा बच्चों से ही प्रत्यक्ष होगा। अभी बच्चों से प्रत्यक्ष हुआ है, यहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं सब, लेकिन ये ही हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर के दूत ये ही है। अभी हमें समझते हैं, हाँ ये भी एक धार्मिक संस्था है, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें से एक ये भी है, लेकिन बाद में कहेंगे कि ये ही है, एक ये ही है जो भगवान को रिप्रेजेंट करती है, परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। तो वो एक बाबा चाहता है वर्तमान समय की, ये हमारी पुकार है, समय चाहता है हम ऐसी स्थिति को पाए। और क्या चाहता है बाबा, ये श्रृंगार बिना ताज तिलक और तख्त, तख्त माने बाप दादा के दिल का तख्त। बाबा को जो चीज प्रिय है वो ही बाबा के दिल में रहती है। जो प्रिय है, जो एक जैसे संस्कार वाला होता है, आपस में दोस्ती होती है, मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही बाबा को सबसे प्रिय कौन सी चीज है, क्या है? मुरलियों में कई बार बाबा कहते हैं ना, बाबा को सबसे प्रिय है सच्चाई। इसीलिए भगवान का नाम भी है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी है, कल्याणकारी है, और सुंदर, अति सुंदर, कोई भौतिक रीति से नहीं, वो आत्मा जो है परम आत्मा है, इसलिए अति सुंदर। तो सत्यता प्रिय है। अब हम कहें हम तो भाई सत्य हैं, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा जो विषय है वो सब कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ये हमारा प्रेलिमिनरी रास्ता तो तय हो गया, लेकिन अब और आगे वर्तमान समय के हिसाब से क्या होना चाहिए। बाबा कहता है जो सच्चा होगा ना, तभी भगवान भी उसी पर खुश रहता है, सच्चे दिल पर साहब राजी, ये गायन हमने सुना है। तो एक तो दिल की सत्यता हो, सफाई हो, सच्चाई हो, और वो कैसे होगी, बस बाबा से हम रोज वार्तालाप भी करें, बात करें। इसीलिए बाबा ने मार्जन दिया, ब्रह्मा बाबा भी यही करते थे, रात को सोते समय अपने मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाते थे। आप सब लोगों ने यज्ञ का इतिहास पढ़ा होगा ना, तो उसमें बाबा क्या करते थे, पहले बाबा ने ये करा पक्का, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, डायरी में लिख के। उससे बाबा को जब ये पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ और सब आत्माएं हैं, तो बाबा जिसकी तरफ भी देखता था, दृष्टि देता था, वो थोड़े समय के लिए ही सही आत्मिक रूप में स्थित हो जाते थे। वो बाहर बस हम लोग जब मिलते थे, हमें तो बाबा से बहुत मिलने का अवसर मिला, बाबा आज फिर आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन, और हम बाबा की बाह में हम लोग खिंचे हुए चले आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया था, वो दृष्टि देता था, तो हम सब की भी भले टेम्परेरी सही थोड़े समय के आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते थे, विदेही बन जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा के जब हाँ स्पर्श होता था बाबा, बस ऐसा लगता था जैसे अशरीरी विदेही ये जो स्थिति है, ये आत्मा की अल्टीमेट स्टेज है। उसके बाद बाबा नाम पूछता था, परिचय पूछता था, आदि आदि, और टोली खिलाते थे, एक जाता था दूसरा आता था। तो भाव क्या था, कईयों के नाम बदल देता था बाबा। हाँ मुझे भी अपना याद है, बाबा से मिले, बाबा ने पूछा बच्चे क्या नाम है, तो हमारा लौकिक में नाम जैसे श्री है, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण ये होता है ना, और सरनेम लौकिक रीति से सिंगल है, तो बाबा को बताया श्री। तो बाबा देखो कैसे सबका दिल जीता हुआ होता, बाबा बच्चों के साथ बच्चे जैसा, जवान के साथ जवान जैसा, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा, एकदम ना। और बस बाबा आओ दादी आओ दीदी, देखो ये बच्चा है ना, इसका नाम ये है। अब बाबा जो है, बाबा अपने नाम के आगे भी ये नहीं लगा सकता है जो इस बच्चे का नाम है। श्री श्री किसके आगे लगता है भाई, जिनके आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, शरीर भी विकारों से पैदा नहीं हुआ है और आत्मा भी एकदम पवित्र है, तो इस कारण से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में लगा सकते हैं सब, लेकिन यहाँ कोई नहीं लगा सकता, न किसी की आत्मा पवित्र है न किसी का शरीर पवित्र है। तो बाबा ने कहा बस बच्चे आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन कर देता है और तुम्हें श्री जैसा बनना है। देखो बाबा ने नाम बदल के, भाव क्या है, आप सबका भी नाम बाबा ने बदल दिया है। ये नहीं सोचना कि साकार में अब ब्रह्मा बाबा नहीं है, नहीं, क्या नाम बदला आप सबका, सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो इसीलिए पुरानी बातें इस शरीर की सब भूल जाए, पुराना नाम रूप देश काल भले रहना इसी शरीर में है पुराने में, लेकिन अब हमारा पिता परमात्मा है, देखे पिता के साथ रहना है, लेकिन पुरानी बातें सब विस्मृत हो जाए और नया ब्राह्मण कुल में मेरा नया जन्म हुआ है वो स्थिति रहेगी। बाबा हम सब बच्चों से ये चाहता है, पुरानी स्मृति न रहे। तो इसीलिए वर्तमान समय की यही पुकार है, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते चले, बाप समान और ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, अब क्या बनना है आगे, जब हम लोग और पुरुषार्थ आगे करेंगे ना। साथ साथ बाबा ने बताया जैसे बात हो रही थी, ये हमारे अंदर की वृत्ति, जितना योग करेंगे वृत्ति से ये ऑरा चेंज हो गया और इससे फिर वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल के प्रभाव में हम लोग आ जाते हैं। मोटे तौर पे मानो किसी की मृत्यु हुई, वहां गए, उसका दाह संस्कार हो रहा है, वैराग की भावना आ जाएगी, सब वैरागी बैठे होंगे, शांत स्थिति में होंगे, वैराग की भावना। लेकिन वो थोड़े समय का मसानी वैराग होता है। जब कोई और क्लब में गए या डांस हो रहा है, कुछ बहुत मनोरंजन का वातावरण है, तो मनोरंजन के वातावरण में वैसी हमारी सो स्थिति हो जाती है, हम भी झूमने लगते हैं। बाबा चाहता है अब परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव न डाले, बल्कि आपकी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि वो परिस्थिति को बदल दे। कहीं दुख का वातावरण है, गम का वातावरण है, आप इतनी स्वस्थिति मजबूत हो, वहां जाओ और वहां पर आपके वाइब्रेशन से वो दुख अशांति गम का वातावरण निकल जाए और सब शांति में स्थित हो जाए। तो स्वस्थिति अब हमारी शक्तिशाली हो, ऐसा अभी वर्तमान समय बहुत बहुत बाबा का भी देखो कैसे स्वस्थिति को बाबा शक्तिशाली बनाता था। बाबा इतनी एज थी 93 इयर्स की, लेकिन कई बार मुरली सुनाते सुनाते बाबा को खांसी आ जाती थी, हमें लगता था आंखें गीली हो गई, बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, बस खांसी आई और बस बाबा कह, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, 5 तत्वों का बना है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो शरीर भी ये पुराना है, आत्मा भी देखो पुरानी है, सतयुग से जन्म लेते लेते अब तक, बस अब फिर बाबा के पास ही कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र रहता था। ओहो देखो बच्चे, कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा, सब तत्व भी सत्व प्रधान होंगे, आत्मा भी सत्व प्रधान होंगी, बाबा को भी और सब बच्चों को भी, सबको ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी दुनिया होगी, सतयुगी दुनिया, और बस बाबा उसमें खो जाता था, स्वस्थिति शक्तिशाली हो जाती थी, खांसी रूपी परिस्थिति गौण हो जाती थी और नीचे आ जाती थी, और बाबा एकदम उस शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाता था। थोड़ा योग करता है। तो अभी वर्तमान समय हम लोगों की वृत्ति भी ऐसी उपराम वैराग्य वृत्ति बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। इस संसार से जैसे हमें अब कुछ लेना देना नहीं, काम करें, कर्म क्षेत्र है हमारा, कर्म करते हुए भी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो जितनी कम से कम होंगी उतने हम खुश और शांत नुमा रहेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो बाबा ने बताया ना, जो मैं बता रहा था सच्चाई की बात, तो सच्चाई की परख क्या होगी? हम तो क्या, हम तो बहुत सच्चे हैं। तो सच्चा जो होगा वो सदा खुश रहेगा। सच तो बिठो नच कहते हैं ना, खुशी में नाचता रहेगा। तो वो बाबा, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। आज किसी ने मान दिया, स्थान दिया तो बहुत खुश हो गया, कल अपमान अगर हो गया तो दुखी होके नीचे आ गया, नहीं, उसकी स्थिति हमेशा सदा प्राम अभियत की वैराग्य। इन सब से ना हार जीत मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ सब में स्थिति समान होगी, जो गीता में कहा है। अब ऐसी की आवश्यकता क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आने वाली हैं जो बहुत बहुत विकट होंगी। एक तरफ पांच तत्वों का ये आक्रमण, ये जो प्रकृति है ये अपना रौद्र रूप दिखाएगी, कहीं अर्थक्वेक होगा, कहीं फ्लड आएगा, कहीं बादल फटेगा, कहीं सुनामी आएगी, कहीं बहुत अति गर्मी, कहीं अति बरसात, कहीं अति सर्दी। तत्वों का भी होगा, शरीर का भी अपना, बीमारियों के पेपर, अंत में लास्ट में लास्ट पेपर हमारा ये शरीर का ही है अंत में। तो इस कारण से इसके लिए अभी से ही हमें जैसे तैयार होते जाना है। जिस चीज का अभ्यास होता है ना वो चीज करनी बड़ी सहज हो जाती है। आप भी याद करो बचपन में, माताएं बैठे हैं, जब आप छोटे होंगे, कन्या होंगे, तब रोटी बनाना आपको अगर सिखाया होगा तो पहली बार में ही तो गोल गोल नहीं बन जाती, चिपक भी गई होगी तो उस पार चकले पार गोल भी नहीं, सब प्रकार के नक्शे बने होंगे सब वो। लेकिन प्रैक्टिस, भाई लोग भी जब पहले पहले साइकिल सीखी, स्कूटर सीखा, तो कई बार गिरे भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते, अभी तो बस कुछ भी सोचते जा रहे हैं, कुछ वार्तालाप करते जा रहे हैं और अपने आप ही वो चलता जा रहा है। तो प्रैक्टिस जितनी अभ्यास, योग लगाने अमृत वेले जरूर बैठो। एक मुरली में बोला था बाबा ने कि बच्चे ना अगर उठ के बैठते भी हैं तो भी उनके 50% मार्क तो जमा हो जाते हैं। कितना सहज बाबा ने कर दिया देखो। लेकिन कई बार उठते नहीं है, अरे योग तो लगता नहीं, थकान है, नींद आ रही है, चलो थोड़ा देर और सो लेते हैं। और इस कारण से फिर क्या होता है कि उठ के ही नहीं बैठेंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी? उठ के बैठेंगे, आज थोड़ी मतलब चेतनता रही, सुस्ती ज्यादा है, बैठते रहो, कंटिन्यूटी ब्रेक डाउन ना हो। जब कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर अभ्यास कम हो जाता है और व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आवश्यकता ये है कि समय अभी ये चाहता है जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी मर्यादाओं को और इनको तोड़ना नहीं है। और दूसरी बात क्या होती है, एक तो बाहर का क्षेत्र होता है। आज कल ही बाबा ने मुरली में बोला था ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी घर से ही सब शुरू होता है। तो पहले हम बनेंगे, हमें देखना है, अपने परिवार वालों को बनाना है। परिवार के इस स्थिति में मैं एक बात बताता हूँ, आप सबके बड़े काम की चीज है वो। हम भी लौकिक में सात भाई बहन है, माता पिता, तो माता पिता ज्ञान में आए, पहले माता जी आई, फिर घर में ही शुरू हुआ, और हम और हमारी लौकिक छोटी बहन जो मधुबन में पांडव भवन में, जिसमें करीब 45 साल 50 साल ईश्वरीय सेवा दी, वहां रहे डाइनिंग में। तो हम दोनों कुमार कुमारी थे, तो आ गए ज्ञान में। बाकी पांच की मैरिज हो गई थी, अपने अपने परिवार में थे, लेकिन सब बहुत यंग थे, 22 24 25 30 साल ऐसे ऐसे। तो हमारे पिताजी ने, लौकिक पिताजी ने एक बार बाबा से पूछा कि बाबा ये जो दूसरे मेरे बच्चे हैं वो ज्ञान में आएंगे, कब आएंगे? तो बाबा ने कहा देखो एक नियम है। क्या नियम? कि जिस परिवार से परिवार का बड़ा ज्ञान में चलता है उस परिवार के बाकी सदस्यों को भी आना है, लेकिन अपने समय पर आएंगे और उनसे प्यार का स्नेह का संबंध बना करके सदा चलते रहना है। होता क्या है, जब हम ज्ञान में आते हैं हमारी मर्यादाएं ऐसी होती है, खान पान अपवित्र छूट जाता है, तो परिवार वाले भी थोड़ा दूर से होने लगते हैं। इवन अपने भी बहू बेटे भी ना, वो किए तो हमारे हाथ का खाते नहीं, वो दूसरे भाव से ले लेते हैं। कहीं पर भी बाहर जाना आना, सोशल सर्किल बदल जाता है। तो बाबा ने कहा है कि बस उनसे संबंध संपर्क बना के रखना। तो हम अपने लौकिक पिताजी को देखते थे कि बस जो भाई बहन थे उनके बच्चे वगैरह, तो बस कभी पेन है, कभी कोई ट्रॉफी वगैरह, कभी ऐसा बैच है, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गिफ्ट भी देते रहते थे बच्चों को। घर में आते थे माता जी भी ना, ऐसे नहीं कि भाई बहू मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, बस नहीं नहीं आओ बहू मिलके काम कर लेते हैं घर का, और मैं खाना बना लेती हूँ, तुम बाकी काम कर लो। तो दूसरा घर की सफाई है या घर का सब ठीक ठाक करना है, तो युक्ति युक्त चल के जितना रहेंगे, संभाल के रहेंगे, तो क्या होगा। हमने देखा सात में से हम छह भाई बहन ज्ञान में आ गए, पिताजी ने ये संबंध संपर्क बन, लेकिन अपने अपने समय पर आएंगे बोला था। तो पहले बहन भी ना 25 साल बाद है जब हम लोग ज्ञान में आए, उनके 25, लेकिन आए तो जो लास्ट सो फास्ट का गायन है तुरंत ही, 20 तो पढ़ा ही हुआ था ज्ञान में आए, उसके बाद घर में सेंटर भी खोला, बना के भी दिया सेवा भी। और उनके दोनों बच्चे जो है वो अमेरिका में वहां पर सेंटर चलाते हैं, और वर्तमान समय जैसे हमारी चौथी जनरेशन ज्ञान में चल रही है, चौथी जनरेशन। तो ये बात उसमें वो भी हैं जो समर्पित हैं, हम लोग जैसे जो 60 साल हो गए समर्पण में ज्ञान में चलते हुए, और ऐसे भी है जो प्रवृत्ति में है, लेकिन संबंध, हाँ हर एक का संबंध वो अलग है। कोई बिल्कुल समर्पित भावना से है, कोई संबंध संपर्क में है, सप्ताह में एक बार जाते हैं गुरुवार, लेकिन आए सारे के सारे और आ रहे हैं। तो भगवान के माँ बाप के गलत नहीं हो सकते। तो आप लोग भी जो है समय की डिमांड ये है, बाहर की सेवा तो करते हो, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर की भी सेवा करो। घर में परिवार वाले संबंधी जो भी हैं उनके साथ योग युक्त 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 उन्हें ये फीलिंग ना हो, नहीं तो अक्सर करके वो खुद दूर हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारे हाथ का नहीं। उन्हें कहते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर हमारी महिमा करते हैं, देखो इनका त्याग, इनकी तपस्या, कितना खान पान शुद्ध है। लेकिन बाहर से उनका ईगो जो है, अहम भाव जो है, वो उन्हें ये स्वीकार नहीं करने देता। इसलिए आप कहो, कहते भी रहो चाहे चलो ध्यान में आओ, लेकिन ना आए तो उनको संबंध में ना कटुता नहीं आने दो, वही प्रेम प्यार। इसीलिए भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत ये भी है जियो और जीने दो। हम अपना जी रहे हैं, सब अपना अपना जी रहे हैं, अपने को जैसा जिसको लाइक होता है, लेकिन दूसरे को हम, हमारा बताना फर्ज है, बाप है बच्चे को बताना फर्ज है कि भाई ये गलत है ये सही है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें ये मेरे कहने पर ही चलेगा और बदल जाएगा, न हो तो उसमें हमें निराश नहीं होना, बताना फर्ज है। ऐसे परिवार में सबको ज्ञान में चलाना बताना फर्ज है, लेकिन बड़े प्रेम से स्नेह से, आत्मा ही प्रेम स्वरूप है। देखो आत्मा को ही अंग्रेजी में सोल बोलते हैं, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जब प्रेम स्वरूप है तो हमारा व्यवहार जो है सबके प्रति इतना प्रेम पूर्ण रहे। तो अक्सर करके अभी सब बोलते देखो हमारे वो ज्ञान में चलते हैं, हम नहीं चल पाते, लेकिन हम अपनी कमजोरी की वजह से नहीं चल पाते, लेकिन वो कितने महान है। तो वो ज्ञान में, तो वो आपको ज्ञान में चलते चलते देख करके प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आपके टकराव में नहीं आएंगे। बाकी तो हर एक का पार्ट है, कोई राजा महाराजा महारानी बनने वाले हैं, उनका जीवन जीने का ढंग बिल्कुल ईश्वरीय पूरा परिवार नुमा हो जाएगा, और जो प्रजा में आने वाले होंगे वो संबंध संपर्क में ही दूर दूर से ही रहेंगे। तो इसलिए उसे देख करके ये निराश नहीं होना है, ना एक्सपेक्ट करना ये भी हमारी तरह ही चले। हम रोज जाते हैं तो ये भी रोज जाना शुरू कर दे क्लास में, हम ये करते हैं बाहर बिल्कुल पानी भी नहीं पीते तो ये भी ना, नहीं, हमारी राजधानी तैयार हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार के लोग होंगे ना। तो इसीलिए अभी समय की यह है कि बाहर भी सेवा करें और घर के जो बचे हुए मेंबर हैं उनको हम संदेश जरूर दे दें, दबाव न डाले। हाँ, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आज नहीं तो कल अवश्य आएंगे भगवान के माँ वाक्य, लेकिन अपनी राजधानी में अपने समय पर आएंगे। तो एक ये है, एक दूसरा एकाग्रता बढ़ाने का समय है। जितना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तो उतना हमारा सकाश जो है, लाइट जो है, मैं पावर हूँ, टावर ऑफ लाइट हूँ, माइट हूँ, एनर्जी हूँ, वो अपनी स्थिति जो है दूर दूर तक जाएगी। और बस कई बार हम कहते हैं ना, अरे अभी मैं आपको याद कर रहा था, आप एकदम सामने आ गए। ये ही टेलीपैथी है, ये ही हम बस किसी को भी याद करेंगे और हमारी इतनी शक्तिशाली, इसी ने बाबा कहता है अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। जैसे चश्मा होता है ना, अगर क्लीन होगा तो भी साफ दिखाई देगा और क्लियर होगा उसका भाव के नंबर भी ठीक है, अगर क्लीन भी है तभी साफ होगा। अगर साफ सुथरा है लेकिन नंबर ठीक नहीं है, गलत नंबर है, तो भी धुंधला दिखाई देगा, और अगर गंदा है तो भी वो। तो इसीलिए एक ये है कि हम कभी भी ना हर परिस्थिति में जब समान रहे। किसी ने कहा है, सुना होगा आपने, कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है। गम तो आएगा लेकिन मुस्कराओ खुश रहो, धीरे धीरे समय तो परिवर्तनशील है, गम चला जाएगा। फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। जीवन में हार भी हो जाए लेकिन अंदर की खुशी ना जाए, कोई बात नहीं, ये हार जो है ना मुझे प्रभु के गले का हार बनाने के लिए आई है, शायद मेरे पुरुषार्थ में कमी है, अब मुझे और तेज पुरुषार्थ करना है। हार से दुखी होकर बैठ ना जाए। और ये कब होगा, जब हम अपने को इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, अंदर देखते रहेंगे। बीच बीच में एक सन्यासी के पास एक आदमी गया, कुछ लोग बैठे सुन रहे थे उसे, तो वो भी जाके बैठ गया और सुनने लगा। इतनी देर में अर्थक्वेक आया, जमीन हिली, भूचाल हुआ, सन्यासी के ऊपर भी कच्चा पत्रा वतरा पड़े हुए थे, छपरा जैसा, वो भी हिलने लगा, आवाज करने लगा। तो भूचाल तेज था तो सब लोग भागे बाहर, तो एकदम, और सन्यासी को भी कहने लगे, आओ आओ महाराज, बाहर निकलो बाहर निकलो, ये ऊपर से कभी भी गिर सकती है आपकी छत और आपको नुकसान होगा। वो बैठा था शांत में, सबने बहुत कोशिश करी, आओ आइए महाराज आप बाहर निकलो। फिर उस थोड़ी देर बाद जब वो भूचाल शांत हो गया तो सबने कहा, अरे महाराज आपको डर नहीं लगा, ये छपरा गिर जाएगा एकदम, मेरी मृत्यु भी हो सकती है आदि आदि, तो आप भागे नहीं, आपको बुला रहे थे हम लोग। तो क्यों आप, उसने कहा, उत्तर दिया, रे आपने देखा नहीं, आप भी भागे थे, मैं भी भागा था, कहा आप तो वहीं बैठे हुए थे, नहीं तुमने देखा नहीं, आप बाहर भागे मैं अंदर भागा। अंदर जब कोई भी समस्या हो ना, तो बाहर तो हम पुरुषार्थ करें जो हमें लौकिक रीति से करना है, लेकिन अंदर की तरफ जाए, एकांत में एकाग्र होकर जब हम बैठेंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है ना, जब वो किसी की, दुनिया वाले भी कहते हैं, जब हम एक उंगली दूसरे तरफ दिखाते हैं तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। ये भूल हम करते हैं सब, तो समय अभी ये कहता है ये भूल मत करो। इसमें बड़ा अच्छा शायर ने कहा है कि जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। जो कांच है उसमें साफ नहीं दिख रहा है तो लगता है हमें कि कांच के ऊपर धूल है, उसे साफ करो, भाई जैसी शक्ल होगी वैसी तो दिखाई देगी। तो शक्ल में ही अगर धूल है, गलती हमारी अपनी होती है, हम दूसरे की तरफ ब्लेम कर देते हैं, बस दूसरे की तरफ कमजोरी को ध्यान देना, ब्लेम करना, ये अब कुल नहीं हो। बाबा चाहता ये समय की पर है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने देखो अंदर, मेरे में क्या कमी है, मुझे ये दूर करनी है, दूसरे में क्या है, ये देखते रहे तो हम कमी हमारे अंदर, हमारे भी अंदर आ जाएगी। इसीलिए अभी जरूरत है साक्षी होकर चलने की। कुछ होता रहे हाँ, लेकिन हम साक्षी दृष्टा होकर के चलते रहे, दृष्टा हाँ, जब हमारी दृष्टि होती है ना, साक्षी दृष्टा, अंत समय बहुत विकट परिस्थितियां होंगी, अगर हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा नहीं हुई तो क्या होगा, उस परिस्थिति के वशीभूत हम हो जाएंगे, वो दृश्य हमें दुखी या अशांत कर देगा। इसीलिए साक्षी दृष्टा बोला है, साक्षी दृष्टि नहीं, दृष्टा माने आत्मा, तो आत्मा देखती है इस दृष्टि के द्वारा, एक है दृष्टा आत्मा, दूसरी है दृष्टि, ये आंख जिसके द्वारा देखती है, खिड़की है, तीसरी चीज है दृश्य, दृष्टा दृष्टि और दृश्य, जो संसार में देखते हैं ना, खिड़की के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, देखने वाला एक है, खिड़की अलग है, बाहर के दृश्य अलग है, तीसरी चीज दृश्य। चौथी चीज है हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा एंगल कैसा है देखने का। अगर हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो हमें खराब बात भी अच्छी नजर आएगी, हम अपने दृष्टिकोण से देखें, और दृष्टिकोण नेगेटिव होगा तो अच्छी बात भी खराब नजर आएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है अब अपना दृष्टिकोण सदा बहुत स्पिरिचुअल और पॉजिटिव बना के रखो। और पांचवी चीज है इसके लिए, वैसे ही फिर भक्ति मार्ग में द्वापर युग से हम जब भक्त होंगे ना, बहुत उच्च कोटि के भक्त होंगे, तो भक्तों के दृष्टांत भी जब लिखे जाएंगे, इतिहास हमारा लिखा जाएगा, तो दृष्टांत वही लिखा जाएगा जो भक्तों के कहते हैं कि अभी तक भी हम गायन करते हैं, सन्यासी द्वापर युग में होते हैं, जंगल में अकेले रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी आते हैं, जीव पशु पक्षी, वो उन पे आक्रमण नहीं करते, उन्हें भीख मांगने नहीं जाना पड़ता, भोजन उनके घर में ही आ जाता था, दे जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साक्षी होकर के अपनी तपस्या में लगन में मगन रहते थे, तो सब उनके दास दासी, प्रकृति भी दासी हो गई। तो इसीलिए अब अंत में बाबा ने ये कहा है कि अपने को ही वो नहीं करना, मन जीते जगत जीत, यही नहीं, मन के साथ ये प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, इन पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है, इनको भी शुद्ध करना है। तो इनको शुद्ध करेंगे, रोज इनके प्रति योगदान दें, तो जब प्रकृति के तत्व भी शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचर शब्द के दो अर्थ हैं, एक है बाहर की नेचर माने फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एक है अंदर की नेचर, अंदर की नेचर माने अंदर का स्वभाव। तो बाहर की नेचर और अंदर की नेचर बस मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, रिफ्लेक्शन है। जब अगर हम अंदर से भी सतो प्रधान होते, अंदर हमारी नेचर प्रकृति शांत पवित्र अच्छी होती है, तो बाहर की प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। अर्थक्वेक नहीं होता, फ्लड नहीं, सतयुग त्रेता में कभी ऐसा होता है, बाहर की नेचर भी हमारी दासी हो करके रहती है, क्योंकि अंदर की नेचर मेरी सतो प्रधान है, और जितनी नेचर हमारी अंदर की सतो प्रधान, बाहर की नेचर भी सतो प्रधान। तो सतयुग में तो हमें सबको जाना ही है, तो इसीलिए बाहर की नेचर को तो हम रोक नहीं सकते, अर्थक्वेक आएगा रोक नहीं सकते, कोई साइक्लोन आएगा रोक नहीं सकते, लेकिन जिस कारण से वो आया है, क्योंकि मेरे अंदर की नेचर तमो प्रधान हो गई है, तो बाहर की नेचर भी तमो प्रधान हो करके अपना भयंकर रूप दिखाती है। तो जितना जितना हम अपनी अंदर की नेचर को कंट्रोल करते जाएंगे, समय की यही पुकार है, आप दूसरे को करेक्ट कम करो, अपने को करेक्ट करो। मैं जागूंगा, मैं जीतूंगा, जग जीतेगा, जग जागेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है हम सबको साथ में चलना है, और साथ परम धाम जाने के लिए यही मेरे समान बनो। हमें पवित्रता की उस स्थिति को धारण करना है जिस स्थिति में आत्मा परम धाम से आई थी। और अंत में मैंने साकार ब्रह्मा बाबा को देखा है, 18 जनवरी को भी मैं मधुबन में था, तो बाबा की 17-18 जनवरी को हमने कर्मातीत अवस्था जो देखी ना, उसमें यही देखा, एक तो मन जीते जगत जीत, मन बाबा ने इतना जीत लिया था अपना कि दूसरे के मन की बात को तुरंत ही परख लेते थे। पहले बाबा के पास जब आते थे, बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या पूछना है, क्या बात है। उस दिन जब हम 17-18 जनवरी को बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने ऐसे दृष्टि दी थोड़ा सा, और दृष्टि दे के बाबा ने कहा, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। हमें बोलने की जरूरत भी ना पड़े, वो कब होगा, जब हम हमारे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, तब हम दूसरे के संकल्प को क्लियरली पढ़ सकेंगे। अंत में लोग आएंगे, हम सबके इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां बैठी हैं यहाँ, तो हमारे सामने लोग बहुत बहुत इच्छाएं भावनाएं लेकर के आएंगे, लेकिन समय ये नहीं होगा बताने का बोलने का उनका। और जब वो आएंगे तो उस समय हमें क्या करना है, उस समय बस हम उनके नैनों से पढ़ लेंगे उनके मन की इच्छा, और हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, तथास्तु, बस तुम्हारे मन की इच्छा और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ नहीं है, हमने उसकी अंदरूनी इच्छा को पढ़ करके भगवान तक कन्वे कर दिया, करण करावन हार तो बाबा है, बाबा उसकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए अभी ये आवश्यकता है, एक तरफ अपने मन को जीतने की और दूसरी तरफ हमारे तन में कहीं भी अपवित्रता का भाव न हो। मनसा वाचा कर्मा, तन और मन हमारा पवित्र होगा तो हम सब बस संपूर्ण बन के बाबा के साथ परमधाम जाएंगे और वहां से ब्रह्मा बाबा यानी श्री कृष्ण के साथ नई सतयुगी दुनिया में आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
तेरी राह।